अब हम कथा में आते हैं, अब तो 8 बज भी गया, तभी तो कुछ सुनना है। कोई कोई कहते हैं, प्रश्न करते हैं, फिर उसी में लौट रहा हूं। अरे राधा जी तो कृष्ण की मामी है, कौन से शास्त्र में उनकी मामी है? शायद उन्हीं के नाम के शास्त्र में कोई होगा। हमने सारे वेद उपनिषद शास्त्र सब कुछ पढ़े हैं, इतिहास पढ़े हैं, रामायण महाभारत गीता भागवत पढ़े हैं, किंतु कहीं हमको देखने में नहीं मिला कि उनकी वो मम्मी है कि मामी है। नहीं, विशेष करके कृष्ण लीला में या कृष्ण का कोई मामी नानी कोई नहीं है, जीव मात्र उनका दासी है। और दास दासी होने पर भी एक विशेष बात है, सभी शक्ति से निकली है ये सृष्टि, हुई शक्ति से। वो शक्ति कौन है? राधा जी स्वयं है। योग माया और महामाया दोनों उन्हीं की शक्तियां और प्रवृत्तियां हैं, मूल में वही लादरी शक्ति स्वरूप शक्ति है, वो कृष्ण ही है। तो राधा जी से निकला वो सब शक्ति है, हम जितने पुरुष और स्त्रियां हैं स्वरूपता सब हम लोग स्त्री हैं। इसलिए समझो कि किसी के साथ में मामी भाभी चाचा चाची का संबंध उनसे नहीं है। दिखलाने के लिए ब्रज में उन्होंने लीला की, पिता माता हुए। यदि ऐसी बात थी तो नंदगांव की जितनी लड़कियां थी तो कृष्ण की कोई भाभी लगती, कोई बहन लगती, कोई माता लगती, तो नंदगांव की स्त्रियों के लिए इतनी प्रशंसा की कोई क्यों की गई? ओ भक्तम ओ भक्तम नंद भोक्षाम जन्मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म समान। वो परम ब्रह्म, किसी के मित्र, किसी के सखा, किसी के प्राण प्रिय। तो ये प्राण प्रिय कैसे हो जाते? अभी गोपाल मंत्र है जो दिया जाता है हम लोग के संप्रदाय में, वो सबके प्राण बल्लभ कृष्ण है, गोपियां बल्लभ हैं, बस यही एक संबंध है। इसलिए वहां मामा चाची चाचा ये सब नहीं, वो उनके पुराण में लिखा होगा जो कहते हैं, कभी नहीं सुना न पढ़ा होगे, कहे कहां से सुन। ये सब कुछ भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो कृष्ण की भक्ति के विरोधी हैं, भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो भगवान का रूप नहीं मानते हैं, भगवान का रूप नहीं मानते, भगवान की लीला को नहीं मानते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं। ऐसे लोग ऐसे ऐसी युक्तियों देकर के लोगों को भलाते हैं। पहले कृष्ण वो क्रिश्चियन मिशनरी के लोग जाते थे इंडिया में और लोगों को ऐसे ही धोखा दे करके झूठ फूट को बना, अरे कृष्ण ने क्या किया है? क्या किया? एक सांप मार दिया तो क्या हो गया? एक बगला मार दिया क्या हो गया? किंतु ये नहीं कहते जैसे गोवर्धन धारण कर लिया, आग खाली, ये सब लीलाओं को नहीं कहेंगे, वो झूठ मूठ का। इसलिए किसी ने ऐसे मनगढ़ंत रूप में भागवत का निरादर करने के लिए ऐसे कहा, इसलिए उनकी बातों में नहीं आना है। अब हम चले कथा पर। एक समय श्री कृष्ण सखाओं को लेकर गोचारण के लिए निकले। कृष्ण यमुना के किनारे जा रहे थे, गायों को पानी पिलाएंगे, किंतु पता चला कि उधर नहीं जाना चाहिए, उधर में एक विषधर सर्प रहता है यमुना के हृदय में। हृदय किसको कहते हैं? जिसको यमुना छोड़ करके आगे बढ़ जाती है, उसको छोड़ देती है, पानी जमा रहता है उसमें धार नहीं रहती, उसको हृदय कहते हैं। इसलिए कृष्ण गोचारण करते हुए जा रहे थे, लोगों ने उनको मना किया, मत जाओ, गैया पानी पिएंगी और मर जाएंगी, सखा लोग मर जाएंगे, तुम लोग भी मर जाएगा। वो पिशुधर काला सर्प है, उसके विष से पानी वहां का खौलता है, कोई नहीं जा सकता। कृष्ण ने कहा अच्छी बात है, तो यहाँ पर जितने गोप हैं, गोपी है, गाय है, ये तो भूल भटक करके भी जा सकती हैं, तो संवर जा सकता है, इसलिए उसको उस सर्प को यहां से भगाना चाहिए। ऐसा सोचकर कृष्ण सखाओं से बोले, मैं अभी आ रहा हूं, तुम लोग कहीं जाना मत, गाय को यहीं पर फेर करके रखना, मैं तुरंत आ रहा हूं। ये कहकर फिर कृष्ण जल्दी से गए और जमुना के हृदय पर एक कदंब का वृक्ष था, जिस पर गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर के बैठे थे, इसलिए वो बचा हुआ था। उसके आसपास के और सर्पण तो जल करके खाक हो गए, किंतु वो वृक्ष जला नहीं था, क्योंकि अमृत का कुछ एक हवा उस वृक्ष को लग गई, और वो वृक्ष आज भी है, जिस पर चढ़ करके जमुना में कूदे, उसके ऊपर में चढ़ गए और चढ़ करके ऊपर से कूदे, ऐसा कूदन कूदे मानो हिमालय को लेकर के उस पर कूद रहे हैं, चारों तरफ में पानी और बहुत किनारे तक चला गया उनके बाहर से, और पानी खोल रहा था बीस, यदि डूबे उसमें कूदे तो मुख में पानी आएगा कि नहीं, ये भगवत्ता का लक्षण है। आजकल तो बहुत से ऐसे लोग कहते हैं मैं भगवान हूं, बूढ़े और टीबी रोग हो गया है, कैंसर हो गया, कहते हैं कि मैं प्रभु भगवान हूं, दाढ़ी मोछ सब दूर हो गई है, बूढ़े आप एकदम जरट बूढ़े, वो लोग कहते हैं कि मैं भगवान, भगवान तो कभी बूढ़े होते ही नहीं। कृष्ण 120 वर्ष की उम्र में भी नौजवान लड़के थे, अभी छोटे से बच्चे शिशु थे। राम कितना हजार 11,000 वर्ष तक राज्य किया, उनको ये मूछ की वो क्या करते हैं वो नहीं आई, रेखा भी नहीं आई उनको, दाढ़ी भी नहीं आई, और यहाँ के भगवान लोग कितने हैं, कोई साईं बाबा जी बना है, कोई कुछ बना है, नाम तो नहीं लेना चाहिए, किंतु बतला रहा हूं आपको, सावधान रहेंगे, कुछ मैं स्मरेंगे ज्ञान करके लोगों को बस, अरे ये भगवान है, अच्छा भगवान है तो उनके अंदर मुख में बीस ढाल दो तो देखें, एक गबर्धन क्या 10 मन का भी कोई पत्थर का टुकड़ा उसके ऊपर में रखो तो, इले सभी भगवान नहीं है, भगवान ही भगवान है, जिसको शास्त्र भगवान का ऋषि मुनि जो सब कुछ जानते हैं वो कहें तो ठीक है, भविष्य में भी आने वाले भगवानों का वर्णन किस रूप में आएंगे हमारे शास्त्रों में पुराणों में भागवत में सब में लिखा है, इले जिसको तिसको भगवान मत कहना, कलयुग में दिल्ली में 50 भगवान है जो लड़ते हैं दिल्ली जानते हैं, और वहां की बीवी से उनका पेट नहीं भरा तो अमेरिका में आकर के बीवी करते हैं, बहुत से ऐसे लोग, ये सब दुष्ट अनाचारी हैं भगवान के। तो कृष्ण वहां पर उदय सर्पाश में था, देखा जी इस हरद में कौन डुबाया, बस 20-10 सर्प जिसके कितने मुख थे, एक नहीं फणा लगा करके और चला उनकी तरफ में, और कृष्ण को बांध लपेट दिया, चार टस से मस नहीं हो सकते। जब ऐसी हुई किसी ने जाकर के ब्रज में खबर दे दिया, और ब्रजवासी लोग सब रोते डकारते वे यशोदा मैया नंद बाबा और सब लोग रोते, वे कितना चाहते थे हम भी उसमें मर जाए, किंतु बलदेव प्रभु जी ने किसी को आने नहीं दिया, वो जानते थे कहिए अरे कृष्ण कहीं नहीं मर सकता है, नहीं मरेगा मैं जानता हूं, तुम धैर्य रखो 2-4 मिनट में ही देखो। अतः कृष्ण को उसने अपने लपेटे में बांध रखा, कृष्ण टस से मस नहीं हुए, और ऐसे ही मस चुपचाप हो गए, मानो उसको जकड़ लिया, किंतु थोड़ी देर के बाद देखा कि हमारे भक्तों को कष्ट हो रहा है, तो उन्होंने अपने शरीर को छोटा बना दिया और उसमें से निकल आया, और खुद करके उसके फणों में बैठ गए, चले गए। और वहां पर ऐसे डांस करने लगे शंकर के समान, एक एक फण को उछल करके उसे रक्त का प्रवाह बनने लग गया। आज वो समझा कि हमारी पत्नियां हमको कहती थी जो वो भगवान है, मैंने उनकी बात नहीं सुना, इसलिए कहां जा रहे हैं?
ठीक,
ये भगवान नहीं है, भगवान है, उनसे विरोध मत कर, किंतु उनकी बात नहीं सुना। हे नारायण हमारी रक्षा करो। जहां ये भावना आई, साथ ही साथ में कृष्ण ने उसको मारना छोड़ दिया, केवल डांस करने लगे और उसको नथ दिया, नथ करके उसको दुरुस्त कर दिया, शांत बना दिया और वो प्रार्थना करने लगा। और उनकी पत्नियां नागों की, नीचे में नाग जैसा और ऊपर में परी जैसा, वे कृष्ण की प्रार्थना करी, हे प्रभु मैं चाहती थी, आपका विरोध कर रहा था, हम विधवा भले ही हो जाए किंतु ऐसे पति की जरूरत नहीं, अब तो आपके शरणागत ना जाने कैसे हो गया, अब हमारा पति को रक्षा की, यदि शरणागत नहीं है, आपका भजन नहीं करता है, तुमसे हमारा कोई संपर्क नहीं, अब तो आपका शरणागत हो गया, इसलिए आप इसकी रक्षा कर दे। गोपियां पर वो नाग पत्नियां बहुत बड़ी नारी भक्त थी, पहले से कालियुग की बात नहीं सुनता था, अब वो नाग पत्नियां भगवान की प्रार्थना करने लगी। कृष्ण वो छोटे से जो उनके सिर पर खड़े हुए नाच रहे थे, नाच क्यों रहे थे? देखो मैं सांप के ऊपर भी नाच सकता हूँ, ब्रजवासियों को, गोपियों को, राधा ललिता विशाखा को दिखाने के लिए ऐसा नाच रहे, देखो तो मैं कैसा पहलवान हूँ। आज क्रिकेट का कोई खूब बड़ा खिलाड़ी है ना, तो स्त्रियां उसको विवाह करना चाहती हैं, क्योंकि बहादुर है ना। कोई वो बॉक्सिंग में कौन, मोहम्मद अली, वो बहुत, तो उसको स्त्रियां चारों तरफ से 10, 20, 50, 100 कहेंगे जी हम तुमसे शादी करेंगे। फुटबॉल का प्लेयर वैसा हो जाए, और विशेष करके आजकल क्रिकेट वाला हो जाए तो देखो तमाशा। तो वो भी ऐसे तैसे से विवाह नहीं करना चाहते, वो भी झुके चाहते, तो इसलिए वहां भी ऐसे ही समझो। कृष्ण दिखला रहे कि देखो मैं कितना बहादुर हूं और कितना बलवान हूं, ये सबके ऊपर मैं नाच सकता हूं, तब गोपियां हमको पसंद करेगी, नहीं तो पसंद नहीं करेंगी, इसलिए मानो नाच दिखला रहे हैं और गोपियां दर्शन कर रही हैं। अब कुछ देर के बाद में प्रार्थना की, जी हे प्रभु हम नहीं जानते हैं किसने कौन सी तपस्या की, कौन सा अच्छा कर्म किया, तीर्थों में स्नान किया या कौन सा दान पुण्य किया, जो आज ये समस्त विश्व ब्रह्मांड के प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के भी परम ईश्वर ये श्री कृष्ण साक्षात रूप में अपने चरणों को रख रहे हैं, उस पर नृत्य कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ध्यान में अपने चरण कमल उनके दर्शन नहीं देते, शंकर जी ध्यान करते हैं और ऋषि मुनि लोग ध्यान करते हैं, और कृष्ण की जो चरण उनके हृदय में नहीं आते हैं, और उसी चरणों से तुम्हारे ऊपर में जो नृत्य कर रहे हैं, कौन सा आ लक्ष्मी, उनकी लक्ष्मी होकर के, पत्नी होकर के भी उन चरणों को पलोटा करती हैं, उनके सिर पर ये पैर नहीं रखे जाने को, और तुम कैसा तपस्या, लक्ष्मी भी नहीं मिली कृष्ण को, नहीं मिल सकी, और वही कृष्ण मतलब अपने पैरों से जिसके ऊपर में पैर रखते हैं वो कैसा धन्य होगा। देखो और एक बार, कृष्ण के जिन चरणों का मुखमंडल का ध्यान ऋषि महर्षि करते हैं उनके हृदय में नहीं आता, और अघासुर ने कौन सा ऐसा तपस्या किया जो उसके मुख में अपने सखा और बाल बच्चों के साथ में, गायों के साथ में भीतर में प्रवेश कर गया, कैसा उसका शरीर काट करके जलाया जाने लगा, तो धूप अगु की तरफ में वो फैल गया, और उसके सूखे उसमें वो लोग खेल करते थे, एक बरस तक खेलते थे उसके अंदर में समान समान, ऐसा पवित्र हो गया, भगवान का नाम से आदमी पवित्र हो जाता है, उसको सुख और शांति मिलती है, तो भला उनको नहीं होगा। अब ये काली वो कृष्ण ने जबकि वो ठीक हो गया तो कृष्ण ने कहा जी तो अभी छोड़ करके चले जाऊंगा, अभी सरोवर में नहीं रहना है, तुम चले जाओ, मैं जहां पर रहते थे रमणिक द्वीप में वहां चले जाओ। बात ऐसी हुई, कद्रु की मैया, कद्रु के बेटे सर्प हैं और गरुड़ जी की माता विनता है, वो शौक है परस्पर, किसी कारण से कद्रु ने चतुराई करके कहा जे सूर्य की एक घोड़ों की पूंछ काली है, और विनता ने कहा सफेद है। उन्होंने कहा यदि सफेद नहीं हुई तो तुम हमारी दासी बन जाना जीवन भर के लिए, नहीं तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। ठीक तो सफेद, किंतु कद्रु ने अपने बेटों को काले सर्पों से कहा बेटाओं जाकर के सूर्य की पूंछ को, घोड़े की पूंछ को चारों तरफ लपेट लेना जो काली दिखाई पड़े। इसलिए वो काली दिखाई दी और इसलिए जन्म भर के लिए उनकी दासी बन गई कौन, विनता की मैया। गरुड़ जी को जब पता लगा ये जब बड़े हुए जो मेरी मैया तो उसकी दासी है, तो पूछा किस लिए तुम रोती है चिंतित, अब तो मैं उसकी दासी बन गई और झूठी तरह से हमको हरा दी। अच्छा ठीक, तब क्या किया, वो गरुड़ ले आए अमृत का कलश और लेकर के कैसे तुम प्रसन्न होगी उससे पूछा, और कैसे मेरी मैया को छोड़ देगी, तो हमको यदि अमृत ला दो और अपने बेटों को पिला दे तो अमर हो जाए। इसलिए वो अमृत को घड़ा ले आए, जाते समय उस पेड़ के ऊपर में बैठे और जब उसको घड़ा दिया, सोच रही थी लेकर के अपने बेटों को पिला देंगे तो अजर हो जाएंगे, किंतु बीच में ही देता हूं घड़ा ले लेकर के चले गए, वो जैसे कि तैसे देखती रह। इसलिए उनका दोनों का विरोध था, गरुड़ का और सर्पों का। रमण द्वीप में बहुत सर्प रहते हैं, बहुत, कोई कोई मणिपुर को कहते हैं रमण द्वीप, कोई कोई फिजी को कहते हैं, वहां पर बहुत सर्प थे, अब नहीं है। तो वहां पर झगड़े के कारण गरुड़ को ये था जैसे तुम एक एक सर्प आओ हम उसको खाएंगे रोज, और नहीं आएगा तो हम सबको मारेंगे। एक दिन ये सबसे बड़ा ये काली बहुत भयंकर बलवान हजारों फड़ाएं, वो कृष्ण का उनको जो ले जाने की बात थी तो वो तो अपने खा गया और उनसे लड़ने लग गया, और गरुड़ जी ने अपने चरणों से पकड़ करके उसे मार डालने की चेष्टा की तो वो भाग करके वृंदावन में आ गया। वृंदावन में आकर के उसी हरत में छिप गया, क्यों, वहां पर यह गरुड़ के ऊपर में अभिशाप था, सौवरी ऋषि एक रहते थे उसी के तपस्या करते, वहीं पर गरुड़ जी रहते थे। गरुड़ जी आकर के कृष्ण की भूमि है, उन्होंने एक मच्छ को पकड़ा, पुरुष मछली को, और लेकर के उड़ गए, और जितनी मछलियां थी रोने लग गई। सौवरी ऋषि से बोली हमारे पति कोई लेकर के खा गया गरुड़, और आप यहाँ रहते हम तो आपकी शरण में। उन्होंने जो गरुड़ अब यदि यहाँ आया तुम्हारा शरीर उड़ करके खत्म, इसलिए गरुड़ जी वहां नहीं पहुंचे थे, इसलिए वहां पर छिपा हुआ था। किंतु जब कृष्ण ने उसे छोड़ दिया तो अपने पैरों की छाप उसके ऊपर में दी, वही जो छत्र के ऊपर में सफेद सा दिखता है वो कृष्ण का पैरों का छाप है, इसलिए गरुड़ अब उसको नहीं मारता, इसलिए वहां पर चला गया। तात्पर्य क्या है, यदि कोई व्यक्ति भगवान और भगवान के भक्तों का विरोध करता है, कृष्ण इसे सह नहीं सकते, गरुड़ जी भगवान के भक्त है और सौवरी ने उनको अभी संपा दिया है आने से तुम्हारा शरीर उड़ जाएगा, तो ये भगवान उसको कैसे सहेंगे। इसलिए सौवरी के मन में विवाह की इच्छा जगती, हजारों वर्ष तक जो भी था जल में रहता था और नंगे शीत में गर्मी में, किंतु उसको काम की वासना जग गई। क्यों? वैष्णव अपराध, इसलिए वैष्णव के प्रति कोई अपराध, उनमें कुछ दोष आदि देखे तो मत देखो, तुम समझ नहीं रहे हो। गरुड़ जी जिसको खा लेते थे सर्पों को, उनको मुक्ति मिल जाती थी, वैकुंठ लोक में चले जाते थे। राम के बाणों से जो मरते थे वो सबको मुक्ति मिल जाती थी, वो किसी को मारते नहीं थे, ये शरीर हटा करके मुक्ति दे दे। उनकी दया को समझना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए गरुड़ जी ने उनको सब, गरुड़ जी को सौभरी ने ऋषि ने अभिशंपात किया, साथ ही साथ में उनकी काम वासना जग गई ब्रह्मचारी रहने पर भी। और वो मंदधाता पासी में रहते थे, मंदधाता वहीं पर, मंदधाता का एक स्थान भी है, वहीं पर गए और कहा जी तुम्हारी सुनना है, तुम्हारी लड़कियां बहुत सी हैं 49 ना 50, उनकी शादी हमसे कर दो। उन्होंने देखा ये बूढ़ा ऋषि यदि नहीं कहते हैं, मानते हैं बात नहीं, शादी करते हैं तो वो अभी संपाद देगा, मर जाएंगे, और यही देते हैं तो बूढ़े के साथ में शादी कर रहे हैं, लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहा जैसे महाराज कल ही उनका संदर्भ होना है, आप ही पधारिए, लड़कियां पसंद कर लेगी तो शादी कर लेना, नहीं तो जिसको पसंद करेगी शादी होगी। हजारों लोग उस संबर में वहां पर पधारे, उन्हें कहा जो संबर की जरूरत है उसके पहले एक बार हमको उनसे भेंट करा दो सौभरी। और साथ ही साथ में जब वो रनिवास में ले गए राजभवन में, तो उन्होंने वो शरीर छोड़ करके जो बल से और बन गए कैसे 16 वर्ष के परम सुकुमार परम सुंदर नौजवान वो राजकुमार जैसे कर गए। और लड़कियों से जब भेंट, लड़कियों ने कहा कल की शादी की जरूरत नहीं है, संबर की जो तमाम जैसा बस 100 वो 50 लड़कियों के साथ में शादी की, कैसे 50 शरीर धारण कर दिया जो उसने, और हजारों वर्षों तक उनके साथ में रहे। अंत में हजारों वर्षों के बाद एक बार संध्या के समय, अरे आज मैंने संध्या अमृत नहीं की, याद कर, अरे मैंने इतने वर्षों तक नहीं किया है, हमारा जीवन बिता के अब याद आई। तब फिर भगवान के शरणागत हुए, गरुड़ जी से क्षमा मांगा, इसके बाद वो अपराध से अभी भी सोनरक एक स्थान है वहां, यहाँ पर पिशोभरी ऋषि रहते थे, और वो भी घाट की है जहां पर की कदम का वृक्ष है, इसकी साक्षी है, झूठ मूठ की बातें नहीं। इसलिए ये हमको शिक्षा लेनी है कि भी वैष्णव की निंदा मत करो, गुरु की अवज्ञा मत करो, हरिनाम के संबंध में जो महिमा है उसको झूठ मत मानो, नहीं तो अपराध हो जाए। और एक छोटी सी हल्की सी कथा करके समाप्त करता हूं। एक समय कृष्ण गैया चराते हुए सखाओं के साथ में भांडीर बन गए, भांडीर वहां पर बन पहुंचे, सखाओं को लेकर भोजन कर रहे हैं, और गैया हरी हरी घासें देख करके और सोची जी यहां से वहां पर अति सुंदर घास है चलने, और वहां से फिर वहां, वहां से फिर वहां, ऐसे करते 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 तीर्ण के लोग से वहां पर सरकंडों की बन होता है, जमीन रेतीली बालू बालू, गर्मी का दिन चिलचिलाती धूप, तवे के समान पृथ्वी जल रही, और बालू में जिसका पैर पड़ जाए फोड़ते हुए आदमी मर गया, गायब गरी निकल गई, और इतना सरकंडा का बनता कि उसमें से निकल करके रास्ता खोद करके लौट आना कृष्ण के पास में बड़ा भारी संभव नहीं। जब गाय गई भीतर में डकटने लगी, प्यास के मारे छटपटाने लग गई, पानी नहीं कहीं, जमुना बहुत दूर छूट गया केवल बालू बालू, और उसमें डूब गई सरकंडों से जब रास्ता नहीं मिलता है किधर जाए, इतने में शखाओं ने कहा कि कृष्ण भैया कहाँ गए, पूछा नहीं और भी चल, मतलब क्या? गो माने होता है इंद्री, इंद्री माने जीवा, आम, काम और सब इंद्रिया है, दस इंद्रिया और मन एकादश सबका मालिक, ग्यारह इंद्रियों को माना गया, पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञान इंद्री और एक मन ही सबसे काम कराता है, मन नहीं रहेगा तो आदमी मर जाएगा। तो ये इंद्रियां हैं, कृष्ण यदि हैं और इस संसार में मनुष्य देखता है क्या, जब जन्म लेने के लिए माता के गर्भ में आता है तो प्रतिज्ञा करता है, हे प्रभु इस नरक से उद्धार कीजिए तो हम जगत में जाकर के भजन करें, और यहाँ आते ही भूल जाता है, क्यों? हरी हरी घास देखता है, हरी हरी घास माने क्या, कान से जैसे वो गा रही बंगाली ऐसे मधुर तानों को सुनना चाहता है। रामलीला में देखा हो कि रावण इत्यादि असुर हैं, अस्पराएं नृत्य कर रही हैं और वाह 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 ऐसे कर रहे हैं। जीवा क्या चाहती है? मधुर मधुर स्वादिष्ट भोजन करना चाहती है, शराब पीना चाहती है, मदिरा पान करना चाहती है। कान सुंदर सुंदर बातें, मधुर मधुर बातें सुनना, प्यारी तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, और पति कहता है तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, वाह, और दूसरे से लव कर रहे हैं, तो ये सुनना चाहता है। और इंद्रियां हाथ सुंदर सुंदर कोमल चीजों को स्पर्श करना चाहता है, और इसलिए अपना प्राण भी दे देते हैं, ये इंद्रियों का काम है। तो इंद्रियां भगवान की सेवा को छोड़ करके इन हरी हरी घासों की तरफ में, अर्थात विषय भोगों की तरफ में दौड़ती हैं, कृष्ण को भूल जाती हैं, तो क्या होता है, वैसे ही वन में भटक जाते हैं। हम लोग इस समय वन में भटके, और इसके बाद में क्या हुआ, सखा लोग कृष्ण से पूछा नहीं, वो भी खोजते खोजते चले, और गायों ने घास चर रखा था उसका कहीं कहीं गिर गया, उनके पैरों के चिन्ह है, उनके पीछे पीछे भी वहां पर सरकंडों के पर, और बड़ी जोर से प्यास लगी, कहीं पानी नहीं, पालू के में पैर जल रहे हैं, अब मरे मरे, और इतने में कंस के अनुचरों ने देखा अच्छा समय है, पर में आग लगा दी, आग लगा देने के बाद में सूखी हुई घास, और आग लगी, और आग लगने के साथ में हवा चली, जहां आग लगती है हवा चलती है, ठंडी हवा को भरने के लिए गर्म हवाएं घुट जाती है, ठंडी हवा वो भी कर दो, तो वो हवा की वजह से उसके अंगारे चिंगारियां इधर से उधर खत करके सारे बन में चारों तरफ में आग लटपट कर, उसकी लपटे चारों तरफ, अब तो कोई रास्ता नहीं, अब मर रही है बच्चे भी और दिखाएंगे, ये हमारी स्थिति है। अभी नहीं मालूम होता, जब बूढ़े होंगे तब मालूम होगी, जब लड़के भी ताना मारेंगे ये क्या बूढ़ा खांस रहा है, ये मर क्यों नहीं जाता है, ये बुढ़िया तो करिया मर क्यों नहीं जाता है। अभी आप लोग आराम देख रहे हैं, आराम नहीं बेआराम, कहते हैं ना दाद होती है, इंडिया में उसको दाद करते खुजलाने में बड़ा बाप, कितना हाथ बंद करके खुजलाओ, किंतु ये क्या चीज है, आराम नहीं बेआराम है, ये बीमारी है, पीछे से बड़ा कष्ट सारे शरीर में हो जाएगा, लेप्रोसी जैसा हो जाएगा, इसलिए इससे बचना चाहिए। इसलिए जबकि आग लगी, लपटे उठने लगी, सब उसमें डेटा, हम लोग भी इसी तरह से जब होगा तब समझेंगे, बीच में खड़े हैं कोई सहारा नहीं, अब गायों ने और सखाओं ने हे कृष्णा हे बंदे मेरी रक्षा कर, कृष्ण थोड़े दूर कहीं है, जहां पुकारो वहीं आ जाएंगे, द्रौपदी के कपड़े बन गए, गजग्रह ने गज ने पुकारा और झट आ गए, पादुका लेने की भी खबर नहीं रही, गरुड़ पर चढ़ने की भी नहीं, अपने आप आ गए, जहां उन लोगों ने पुकारा हे कृष्ण हे बलराम आपके शरण में हम जाते हैं। और साथ ही साथ में कृष्ण वहां आ गए, अरे चारों तरफ में आग लगी है, ठीक है आंख बंद करो। आंख बंद करने के लिए क्यों कहा? एक बार कृष्ण ने मट्टी खाई और यशोदा ने देखा, किसी ने कह दिया मट्टी खाया, अरे कृष्ण तूने मट्टी खाया, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। झूठ बोल, मैं देखूं, मुख फाड़ा और देख करके क्या देखा, विश्व ब्रह्मांड उनके और कांपने लग गई। आज बेटे को कई भूत पिशाच लग गया, न क्या हो गया, फिर गायों का गोबर काली गोबर और उनका मूत्र मिला करके कृष्ण का अभिषेक किया गया तब वो ठीक हुए, ब्राह्मणों को दा। इस तरह से आज कृष्ण सोचे कहीं भैया मुझे सुन न ले और मुझे डांटे नहीं मारे नहीं, इन्हें आज आंख बंद कर दो। और आंख बंद करते ही क्या हुआ, गाय ने देखा कि मैं भांडी बट की छाया में बैठी हूँ पालन कर रही, और सखा लोगों ने देखा जिसे मैं वहीं पर हूँ कृष्ण के साथ में भोजन कर रहा हूँ, भूल गए, देखा कि अरे ये स्वप्न देखा था। ऐसे ही भगवान का शरण लो, इस दवा देखेगी ये वैकुंठ में हम है या नहीं, इसलिए भागवत के विचारों पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान का भजन करो, नाम करो और देखो कि तुम्हारा कल्याण, भजन करने में कोई भी परिश्रम, बस उनका नाम करो अपना काम करो। हाँ एक सुना दो तो गोविंद जय जय गोविंद राम गोविंद चल कोई कीर्तन करो। हाँ अभी हमारे कथा का अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे और नहीं तो वंचित रह जाएंगे, इसलिए वो सुना देंगे। और कौन सुनाएगा, कल कौन सुनाया था, कैन यू परहैप्स यू हैव नॉट हर्ड, तो रामचंद्र आज सुनाए या आप करें और मैं जाता हूँ, आप लोग बैठे रहे।
कृष्ण गोविंद गोविंद